नमो अरिहंताळ, नमो सिद्धाळ, नमो आरियाळ, नमो उवज्जायाळ, नमो लोए सव साहूणम। शांत्यष्टक का छठा काव्य पूर्ण करने के पश्चात अब सप्तम काव्य में आचार्य पूज्यपाद स्वामी देखिए क्या कहते हैं। यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करो भासयंस तावद्धारयतीह पंकजवनम निद्रातिभारश्रमम्। यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीव निकायेश वहते प्रायेण पापम्। भगवान के चरण युगल की स्तुति करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसे बोलचाल में अपन कहते हैं कि जब तक तुम नहीं आ जाओगे तब तक काम नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कि जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक कमल बंद रहेंगे, निद्रा का भार ढोते रहेंगे, और जब तक हे शांति प्रभु आपके चरणों की कृपा प्रकट नहीं होगी तब तक संसारी प्राणी पापों का भार ढोता रहेगा। अब शब्दशः इसका अर्थ अपन समझते हैं। देखिए आचार्य क्या कहते हैं। यावत, यावत का अर्थ है जब तक। प्रभा परिकर भासयन श्री भास्कर, प्रभाओं का परिकर है जिसका, अर्थात जो किरणों के समूह से युक्त है, और भासयन प्रकाशमान है, और श्री भास्कर, भास्कर शब्द का अर्थ सभी जानते हैं, श्रेया उपलक्षित भास्कर श्री भास्कर। तृतीय तत्पुरुष श्री अर्थात शोभा से उपलक्षित भास्कर अर्थात सूर्य, शोभा संपन्न सूरज, श्री भास्कर। अब शोभा संपन्न सूरज कौन सा सूरज होता है? तो जिसके ऊपर बादलों का आवरण न हो, जो बिल्कुल निरावरण और प्रकाश संपन्न हो, वो श्री भास्कर हो गया। आचार्य कहते हैं कि यावत जब तक किरण समूह युक्त प्रकाशमान शोभा संपन्न भास्कर सूर्य न उदयते, उदय को प्राप्त नहीं हो जाता, तावत तब तक इह इस जगत में पंकज वनम कमल वन। कमल वन का अर्थ एक ऐसा सरोवर होता है जिसमें कमल ही कमल हो। कमलों के समूह से भरा हुआ जो सरोवर है, उसमें विद्यमान उन सारे कमलों के पौधों को कमल वन कहते हैं। तो जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता, तब तक कमल वन निद्राति भार श्रमम, निद्रा के अत्यधिक भार का श्रम धारयति, धारण करता है, यानी नींद का बोझ ढोता है। कौन? कमलों का वन। जब तक सूरज उदय में नहीं है तब तक। और उसी प्रकार भगवन, हे भगवन, हे शांति प्रभु, यावत जब तक त्वचरण द्वयस्य प्रसादोदय न, आपके चरण युगल के प्रसाद, प्रसाद कहते हैं कृपा को, प्रसन्नता को, आपके चरण युगल की कृपा का उदय न, उदय नहीं होता जब तक आपके चरण युगल की कृपा का उदय नहीं होता, न स्यात् नहीं होता, तावत तब तक एष जीव निकाय, यह जीवों का समूह प्रायेण, प्रायः करके महत पापम वहति, महत यानी बड़े भारी पापम, पाप को वहति धोता है। अब यहां पर ये तो शब्दार्थ हो गया, ये समझना आवश्यक है। दृष्टांत तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरा दृष्टांत है। प्रभा परिकर, किरणें ही जिसका परिकर है, और भासयन यानी प्रकाशमान, और श्री भास्कर यानी शोभा संपन्न सूरज। जब तक उदय को प्राप्त नहीं होता, तब तक पंकजवनम निद्राति भार श्रम धारयति, कमलवन निद्रा के अत्यधिक भार और श्रम को धारण करता है। अब फिर उसके बाद दार्ष्टांत में कह रहे हैं भगवन, बस उसी प्रकार यह आवत जब तक त्वचरण द्वयस्य प्रसादोदय न स्यात्, आपके चरण युगल की कृपा का उदय नहीं होता, ये समझने की बात है। वहां तो सूर्य का उदय था दृष्टांत में, यहां पर भगवान के चरण युगल की कृपा का उदय है, ये क्या वस्तु है? भगवान के चरणों की कृपा जैन सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो इसका तात्पर्य ऐसा भी ग्रहण कर सकते हैं अपन, एक तो सीधे सीधे भक्ति की भाषा में कह देते हैं भगवान को कि आप तो बड़े कृपालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, आपके चरणों की कृपा हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। पर इसमें जो सैद्धांतिक पक्ष है वहां अपन दृष्टि डालें तो फिर प्रसन्नेन मनसा उपास्य मानः प्रसन्न इत्यभिधीयते। न्याय ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि विशुद्ध मन से जो उपासना को प्राप्त होते हैं, यानी उपासना करने वाला विशुद्ध मन वाला हो, तो विशुद्ध मन वाले के द्वारा जो उपास्य होते हैं उनको भी प्रसन्न कहते हैं। प्रसन्न शब्द का अर्थ खुश होता है, प्रसन्न शब्द का अर्थ निर्मल होता है, और प्रसन्न का अर्थ यहां पर कृपा को भी ग्रहण किया गया है, भगवान का प्रसाद यानी भगवान की कृपा। तो तात्पर्य यह हुआ कि जब कोई भगवान के चरणों को पाकर उनकी भक्ति करता है और तर्क कुतर्क में न जाकर आगम से भगवान का स्वरूप यथावत पहचान कर जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, उसकी भक्ति जनित विशुद्धि उसको मिथ्यात्व से मुक्त कर देती है। आचार्य कहते हैं कि जब तक आपके चरणों की कृपा का उदय नहीं होता तब तक महत पापम वहति, यह जीव समूह भारी पाप को ढोता है और सबसे भारी पाप मिथ्यात्व है। वीर वर्धमान चरितम में लिखा है, एकतः सकलम पापम मिथ्यात्वमेकतस्तयोः वदन्त्यत्रांतरं दक्षा मेरुसर्षपयोरिव। कोई ऐसे बुद्धिगम्य एक विशाल तराजू की कल्पना कर लें, कल्पना गम्य बना लो, एक बहुत बड़ा तराजू ले लिया, उसमें जो चाहो वो रख सकते हैं आप। एक समझने की अपेक्षा से दृष्टांत दिया और उस तराजू के एक पलड़े पर 5 पाप 7 व्यसन इन सब को रख दिया। जमाने की हर बुराई को उस तरफ रख दिया एक पलड़े पर, और एक और अकेला मिथ्यात्व बैठा हुआ है। तो जो ज्ञानी जन है इन दोनों पलड़ों में कितना अंतर बतलाते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो मिथ्यात्व है वो मेरु के बराबर है और सारे पाप मिलकर उस मिथ्यात्व की तुलना में सरसप सरसों के दाने के बराबर है। वास्तव में मिथ्यात्व से बड़ा कोई अशुभ कर्म नहीं हो सकता, उसका अनुभाग जब तीव्र होता है तो हालाहल विष के बराबर होता है, उसकी स्थिति जब उत्कृष्ट होती है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। उतने काल में 24 तीर्थंकर ऐसे 7 चौबीसियां हो जाती है, तब एक समय में बांधा हुआ मिथ्यात्व वहां पर अंतिम निषेक को पूर्ण करता है। इतना प्रचंड पाप है मिथ्यात्व। इससे मुक्त होना कहीं भी संभव नहीं है। जब तक भगवान के चरणों की कृपा का उदय नहीं होता तब तक प्रायण प्राय करके यह जीव समूह मिथ्यात्व का बोझ ढोता रहता है और इस बोझ के नीचे दबा हुआ यह संसारी प्राणी चारों गतियों में 84 लाख योनियों में और पंच परावर्तन रूप संसार में भटकता चला जाता है। कोई अंत नहीं। कितनी भी मंद कषाय कर लो, शुक्ल लेश्या में चले जाओ, लेकिन जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक कल्याण का मार्ग नहीं खुलता। और वो मिथ्यात्व का उदय कब दूर होता है? जब भगवान के चरणों की कृपा प्रकट होती है। इसको साधारण नहीं समझना। कई बार थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर लगता है कि ये भक्ति वगैरह क्या वस्तु है। ठीक है, भक्ति है, अपनी जगह रागी लोगों की क्रिया है। रागी रागी में फर्क है। एक अज्ञानी रागी है और एक ज्ञानी रागी है, और एक वीतराग ज्ञानी है। तीनों में परस्पर बड़ा अंतर है। इसलिए राग राग कह करके द्वेष मत करो। प्रवचन सार की 180वीं गाथा में लिखा है मिथ्यात्व और द्वेष हमेशा अशुभ होते हैं। राग दो प्रकार का हो सकता है, शुभ और अशुभ, लेकिन मिथ्यात्व और द्वेष हमेशा अशुभ होते हैं। इसलिए राग के प्रति द्वेष करने से भी अशुभ भाव हो जाएगा। संभल कर चलने की बात है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये चीज मैं जानता हूं, बाकी लोग नहीं जानते। तो इतनी सी घटना को लेकर मनुष्य अभिमान में फूल जाता है और विनय भूल जाता है। अभी तो जो 14 पूर्वों के ज्ञाता है, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र, सौधर्मेंद्र और लोकांतिक देव भगवान के चरणों की रज को पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भक्ति कितनी बड़ी वस्तु है। इसलिए जब तक भगवान के चरणों की कृपा का उदय नहीं होता, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के चरण स्थापना रूप में या फिर साक्षात इस लोक में है। आज पंचम काल में अपने को यहां साक्षात नहीं मिल रहे, स्थापना रूप में मिल रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा का उदय कब माना जाएगा? जब अपने अंदर यथार्थ भक्ति प्रकट होगी। और यथार्थ भक्ति प्रकट होने पर कृपा उदित होती है और उससे मिथ्यात्व विलीन होता है। इसका पद्यानुवाद है। हिंदी पद्यानुवाद प्रखर प्रभा का पुंज प्रभाकर जब तक प्रकट न होता है कमल वृंद तब तक धरती पर भार नींद का ढोता है। त्यों ही तब चरणों का जब तक प्रकट प्रसादन होता है जीव समूह अधिकतर तब तक मिथ्यात्म को ढोता है। जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी जय जय शांतिनाथ स्वामी जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम